इनमें प्रेम सबसे सर्वोच्च अवस्था में रहता है। इसलिए श्रीमती राधिका का के हृदय में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है। मैं कल यही कहना चाहता हूं, और हमारे अतुल कृष्ण गोस्वामी ने भी इसी सद्भावों को कहा। करीब करीब सब श्रोताओं का यही विचार था मूल में अंतर, और श्रीमद् भागवत का यही प्रतिपाद्य विषय वैसा ही प्रेम है। यह प्रेम जहां है वहां पर सब सुखदेव गोस्वामी उनकी वंदना करते हैं, गोपियों की वंदना की और लोगों की वंदना की जाए। इस तरह से देखो, कहते हैं इसको कैसे वंदना किया, जबकि उद्धव जी गोपियों की चरणों की वंदना कर रहे हैं। ये गोपियों के लिए ही वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। रूह भावा एता परस भोगोपबद्धो गोविंद एव अखिलात्मनि। अखिल आत्मनि जो कृष्ण है, आत्मनि माने प्रिय, अखिल आत्माओं के जो प्रिय है उनमें रूढ़ भाव। रूढ़ भाव माने क्या? ये दूसरों में किसी, ये केवल मात्र राधा जी का अपना विषय, रूढ़ अधिरूढ़ मादन मोदन इत्यादि। कृष्ण के प्रति कहां इनका, परमात्मनि कृष्ण के प्रति कहां रूढ़ भाव। इसे इस रूढ़ भाव के लिए ही गोपियों की वंदना करते हैं। यदि गोपियों में रूढ़ भाव नहीं होता तो उनकी वंदना करते नहीं करते। इसलिए परमात्मा ने रूढ़ भाव, गोपियों में रूढ़ भाव, उसमें भी बतलाया गया क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे च रूढ़ भाव। वहां पर भी रूढ़ भाव आया। कहते हैं कि यदि यह प्रेम या भगवान नाम हम उसकी महिमा नहीं जानते, हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं है नाम के प्रति, नाम पर ही हम पहले थे, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और कोई भगवान का नाम करता है उसको कुछ फल मिलेगा कि नहीं, आग को नहीं जानते हैं, आग की महिमा, उसमें हाथ डाल देंगे तो जल जाएगा, बर्फ को हाथ में ले लो तो वो ठंडा नहीं लगेगा, लगेगा। बच्चा छोटा सा है वो आग को अच्छा सुंदर देख करके हाथ डालने जाता है और जहां झट दिया जल गया, वो तो नहीं जानता है। उसी प्रकार से भगवान की नहीं महिमा जान करके भी नहीं, ऐसे भी भगवान का नाम जरूर फल कुछ होगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। जो एकदम नहीं जानता है उसको तो कुछ भाई अच्छा ही फल मिलेगा, आज जो जान बूझ करके फल महिमा जान करके भी अनादर पूर्वक लेते हैं उनका भाई अपराध हो जाएगा। ये समझो, जो जानते नहीं है महिमा और भगवान का नाम करते हैं उनके लिए नाम आभास हो जाएगा, आज जो नाम की महिमा जान करके भी और आदर पूर्वक नहीं करते अपराध उनका हो जाएगा। इसलिए आभास से तो भक्ति हो जाएगी, शुद्ध प्रेम आ जाएगा, किंतु नामापराध से नहीं होगा। इसलिए नामापराध जिन जिन कार्यों के द्वारा होता है वो सब काम को मत करो, जानबूझ करके आलस्य करेगा अपराध, जानबूझ करके सब देह में आसक्ति रखेगा, आत्माभिमान होगा, ये अपराध हो जाएगा। इसी तरह से कार्य उस उपमा के द्वारा, अरे तुम छोड़ दो जो गोपियां कोई भक्त थी, साधारण साधक से भी गई बीती मान लो, कोई साधक भी नहीं थी, यदि ऐसा भी मान लो तो कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, यदि कंस का भय से या क्रोध से या शत्रु मान करके उनके प्रति आविष्ट होता है तो उसकी मुक्ति तक हो जाती है, जय विजय के रूप में वो हो जाते हैं। तो कोई कुछ भी नहीं जाता है, उनको काम कर भी कृष्ण के प्रति हो तो उनका कल्याण नहीं होगा, जरूर होगा। और फिर जगत में वे मां स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दृष्टा, ये जो भगवान को अपना परम प्रियतम नहीं जानती हैं जो स्त्रियां, वही व्यभिचार दुष्ट हैं। कौन व्यभिचार दुष्ट हैं? जो कृष्ण हमारे परम पति हैं उनको छोड़ करके साधारण हार्ड मांस में जिन लोगों ने पति की भावना की है वो लोग व्यभिचार दुष्ट हैं कृष्ण को छोड़ करके। कहां ये और कहां वो जो कि कृष्ण को छोड़कर के परम पति को दूसरे हार मान श्याम को जिन्होंने अपना पति मान रखा है, कहां ये व्यभिचार दुष्टा बनचरी, ये बनचरी मूर्खा है। और कहां वृंदावन के वन में विचरण करने वाली, कृष्ण के द्वारा भी आराधित होने वाली, नित्य धाम में वृंदावन में विचरण करने वाली जो है ये कहां, जिनका कृष्ण में रूढ़ भाव और इनका अपने पति में काम भाव, कहां ये गंदगी और कहां वो रूढ़ भाव। ऐसी गोपियां जगत में जाती है, इसलिए कहे रूढ़ भावा ननुस्करण भजते अभिशुष्ट अभिशक्षा। नहीं जान करके भी यदि कोई कृष्ण की ऐसी आराधना करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर गोपियां रूढ़ भाव से उनकी जो भजन कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, फिर उनकी महिमा कितनी है ये कह करके उद्धव जी खा नहीं पा रहे और बार बार नमन इत्यादि करते हैं। इसी तरह से सब इस लोगों की व्याख्या में और सब लोग बतलाया गया। तो इसी तरह से ये चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है। श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, उसमें काम धर्म अर्थ काम इत्यादि की बातें नहीं है। यहां तक कि द्वारकाधीश इत्यादि की को भी गौण समझ रखा गया। और इसके बाद में ब्रज में केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। वृंदावन भी वैसे ही रसमय स्थान है, कृष्ण का ही स्वरूप है, वैसे ही हमारा वो आराध्य है। गोपियों की आराधना भी ब्रज में भी गोपियों की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। और वैसा प्रेम ही गोपियों के चरणों में दासी होने की भावना, ये सबसे अधिक बढ़ सकती भावना। चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बात करो, वो लोग तैयार हैं नवीन, और वो कपड़े लाओ तो लेकर के इनको दे दो, या वो लोग यदि तैयार हैं तो इनको अभी अभी मैं तो फिर एक साथ में नहीं। अभी हम लोगों के ब्रह्मचारी लोग उन लोगों के लिए कुछ कपड़े दिए गए, ये गौण चीज है, तो तथापि जब दे रहे हैं हम लोग तो मुर्दा घाटी में पड़े हुए कपड़े को लेकर के भजन करके अपना लेंगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। तिरंग क्या पथि न संति, तिराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षा। अरे कपड़े की जरूरत है, बीते लोगों की हम चीज ले जाएंगे, मुर्दा घाटी में पड़ी हुई है, कपड़े पड़े हुए वहां से उठा लेंगे पहन लेंगे कोई भी। अरे भूत लग जाएगा ऐसी बात नहीं, देखो तो उनको एक बार हाँ उसको थोड़ा सा बतला दे, तुम लोग नहीं समझा। जथो जथा तेजो बार मृदांग, यहाँ पर असल में तो है इसका ये तात्पर्य, जथा जिस प्रकार से तेजो बारी मृदा, तेज माने अग्नि, बारी माने जल, और मृद माने मिट्टी। इस जगत में तीनों के विनिमय माने एक में दूसरे का भान होता है ना? जैसे तेज को ले लिया, मृग मरीचिका में वो तेज ऐसे ऐसे करता है, दिखता है ना, उसमें पानी का भ्रम होता है, हुआ ये हुआ तेज में पानी का भ्रम। और कहीं कहीं जल में भी फल और फल में जल का भाव होता है, जैसे दुर्योधन को जल में फल और फल में ये हो गया ना। इसी तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें चिन्मय होने पर भी कभी कभी उसमें जड़ और जड़ में कभी चेतन का भान हो जाता है, ये साधारण अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ देखो, दूसरा अर्थ है तेजो बारी जब कृष्ण ने बंसी बजाया ना, बंसी बजाने के साथ साथ में क्या हुआ, गो द्विज द्रुम मृगापुलकान्न विप्रम, उनका धर्म विपरीत हो गया, जो जड़ थे चेतन बन गए, जो चेतन थे जड़ भय, पक्षी पशु जो थे एकदम चुपचाप माने जड़ बन गए, वृक्ष की डालियां झुक गई, फूलों और फलों से एकदम लद गई, मानो कृष्ण को मधु से झरने लगी और एकदम चेतन जैसे दिखाई। गायें कृष्ण का ये बंसी और उनका रूप सुन करके कान ऐसे ऐसे करने लगे मानो कानों से पी लेंगे और एकदम शांत प्रशांत। अरे वृंदावन के पक्षी सब ये कौन है, पक्षी नहीं मुनि, कौन मुनि, सुखदेव गोस्वामी सब बड़े बड़े, क्यों कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर और उनका रूप देख करके और मयूरों का नाचना देख करके एकदम डालियों पर बैठ गए और वहीं से मुनि होकर के देख रहे हैं। वेद रूपी कल्पलता जो है उसकी बहुत सी शाखाएं हैं और शाखा पर नहीं है बैठते, वृंदावन के पक्षी किस पर बैठते हैं, उसकी एक जो शाखा है ना वो शाखा है श्रीमद् भागवत, उस शाखा पर बैठ करके अर्थात साधन करते हैं ये सब। तो इस तरह से सुख इत्यादि मुनि होकर के उस अर्थात साधन कर रहे हैं। तो ये उस समय में पशु पक्षी इत्यादि जो चेतन है वो जड़ रूप हो गए और वहां का पहाड़ है जो कम बन का बंसी बजाई तो वो गल करके ये पत्थर क्या हो गया, पानी हो गया ना, तो ये फल भी हो गया जल और जल भी आग के समान। उन्होंने ये तो श्रीमद् भागवत में हमारे विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर इत्यादि ने ये कहा, एक दूसरे में इसका भान हो जाता, क्यों गोपियां भी जड़वत हो गई, उसमें एक होता है मृत्यु दशा, मृत्यु दशा माने वहां क्या मुक्त हो गई, मुक्त होकर के एकदम निश्चल जैसी मानव प्राण निकल गए हैं, कहां चिन्ह में और कहां यहां पर ऐसे ही वो दिख रही है, ये तो उसका तात्पर्य ही है। अच्छा अब देखो उन्होंने बतलाया तेजो बारी मृदान, तीन तेज माने यहां ऊर्जा बतलाया, ऊर्जा माने शक्ति, ऊर्जा होती है माने आग इत्यादि है विद्युत, विद्युत मन यदि लग जाए तो क्या होगा, जला करके खाक नहीं कर देगा, तो ये विद्युत से भी बढ़कर के गोपियों के अंदर में जो विरह की भावना है विप्रलंब भाव ये तो आग है, जिसके हृदय में आग लग गई है, कौन सी आग लग गई, विरह की आग लग गई, तब हुआ क्या उसमें आंखों में आंसू हो गए, ये हो गया जल और विरह हुआ तेज, आंखों में अतत अष्ट सात्विक भाव इत्यादि जो हुए ये हो गया क्या जल हो गया, और मिट्टी क्या होगी गोपियों की चरण धूली, कृष्ण को भी ले सकते हो किंतु यहां पर गोपियों के लिए ही कहा गया, उनकी चरण की धूली है माने कैसी चरण की धूली, कृष्ण राधा जी कृष्ण को सर्वोत्तम सब प्रकार से सेवा करती है, अपने कोटि कोटि प्राणों से भी उनके श्री चरणों के नख के अग्रभाग की अर्चन करती हैं राधिका जी, है क्या करती हैं बड़े कोमल से कृष्ण के चरणों को लेकर के अपने हृदय पर रखती हैं, रखने से उनका सी अंगों का कुंकुम उस पर लग जाता है ना? इधर ये कृष्ण की आराधना कर रही हैं और उधर कृष्ण क्या करते हैं, इसका ऋण चुकाने के लिए उनके पास में कुछ नहीं अवशिष्ट रहता है। तो उनके श्री चरणों में अलता लगाकर और कभी अपने वस्त्रक्षल पर कभी अपने सिर पर रखते हैं, तो उनके चरणों का अलता लग जाता है कृष्ण के, उसको बड़े सुरक्षित रूप में आराध्य के रूप में कृष्ण रखते हैं। तो ये राधा जी के श्री चरणों के रज से मिश्रित ये जो कुमकुम है जिस तुलसी पर धारण कर रहे हैं, ये है मृत, ये है मट्टी। ये तीन चीजों का वर्णन किया। अब किंतु उसमें एक चीज उन्होंने छोड़ दी, जत्र विनिमयो, इसकी व्याख्या नहीं की, गड़बड़ कर दिया उन्होंने यहीं पर। तो इसलिए ये सब श्रीमद् भागवत में कितनी कितनी अद्भुत टीकाएं हैं। यदि ऐसे लोग नहीं होते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि नहीं होते, तो ये सब टीकाओं के तात्पर्य कभी भी हृदयंगम हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा यदि करेगा ना उसका कोई अर्थ, तो सामंजस्य नहीं कर सकेगा, गड़बड़ हो जाएगा। किंतु हमारे गोस्वामी ने इसका अच्छी तरह से एक एक का सामंजस्य किया है। इसलिए आप लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीकाओं को फॉलो करने की चेष्टा करेंगे। अब तुम लोग विचार कर, तुम लोगों के लिए अभी छोड़ देते हैं, सब बात ले आओ, कपड़े लाओ ना जल्दी। कौन कहाँ, अरे यहीं पर तो कपड़ा है, जल्दी ले आओ, अभी बैठो, कोई भी जाना मत। ओ ठीक है, श्री माने राधा ही हो,
भगवान राधा की तरह एक भगवत भगवान राधा
बोलते हैं, श्रीमत माने ही बोल लो राधा, श्री युक्त, श्री माने यहाँ पर प्रेम युक्त राधिका जी, और उनके साथ में श्रीमद भागवत, अरे ओरा के वास्ते बोले जी, बोलो नाम बोलते जाओ, तो बैठो देख के आओ वैष्णव की से, तो जल्दी कर
दो नाम से
है
अपना,
तो बेटा हमारे नाम से पा दे
रहे हैं,
आगे मंगल महाराज से करी चलो,
मंगल महाराज
तो दुनिया माँ के दिए दीजिए, लो लो उठे तो लो, तो वो निश्चित नहीं दीजिए ना,
बतला रहे हैं
ना,
यदि महाराज
अपनी चीज बात कर रहे हैं जो वो पड़ी हुई थी, बकरी मैंने कौन पड़ी हुई थी, वो देवजानी, अब वो उसको किसी प्रकार से प्यार स्नेह से फिर उसको निकाल, अब वो दोनों एक साथ में रहेंगे, पहले परिचय दोनों में नहीं था, मैंने संसार में स्त्री से या पुरुष से ये माया है ना दोनों के लिए, दोनों पहले पल क्या नहीं होता, तो ये दोनों कुएं में है, एक ऊपर से एक कुआं में है, एक नीचे से, दोनों में प्रीति हो गई और दोनों गहरा सातन, ऊपर से यदि कोई बकरी के स्नेह नहीं वो भी गिरा हुआ है ये संसार वाले, कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीवन भर हम विवाह नहीं करेंगे ब्रह्म से, वो भी कुएं में पड़े हुए है, तो वो जजाति जी कर रहे हैं, तो उससे प्रेम और एक उसको मिल गई तो उससे भी प्रेम कर दिया, अब दोनों में शत्रु का अनबन हो गया, तो वो जाकर के अपने पिताजी से कह दिया, तो उसने उसके
उपासन कर दिया,
ऐसा ही होगा, अभी हंसो मत, हंसने की बात नहीं है, ऐसे ही होता है, प्रत्येक जो आदमी भगवान का भजन नहीं करेगा ये अवश्यम भावी सबके लिए है, वो बकरे बकरी में हम सभी लोग आ जाए, तो फिर वो दिल दिलाती हुई वो बकरी गई अपने पिता के पास, पिताजी ये तो हमारी ही हानि हुई, इसलिए आप हमारे स्वामी को फिर से ठीक कर दो। अपने ही नालिश करके उसको ऑपरेशन कराया और फिर अभी जाकर के फिर अपने सूर के लिए फिर उनको भी दया आ गई। सचमुच में हमारे लड़की की लिए दूर होती
तो वो शुक्राचार्य भी ऐसे हैं।
इस तरह से फिर
वो दोनों में क्या हुआ,
फिर दोनों में विवाद होना तो शुक्राचार्य ने उसे कहा कि अच्छा ठीक है इसको जब जोड़ दिया जाए
हाँ तब ठीक हो जाए,
ठीक हो जाएगा।
नहीं दूसरे का दूसरे का वो लेकर के लगा
दिया,
उनमें ऐसी ताकत थी जो का बल था, उन्होंने कह दिया जाके दूसरे का नौजवान लेकर के तुम अपने बुढ़ा पर। वो बड़ा भोगी था, उसने अपने लड़के से ही कहा जैसे तुम लोग अपना जौवन दे दो और हमारा बुढ़ापा ले दो। ये सब संसार की मैंने सबसे बातें ऐसी ही है, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, दांत टूट जाता है नया दांत लगा देते हैं, नई दांत लगा देते हैं और सब एकदम जौवन बनने के लिए भगवान का मन नहीं करेंगे और शरीर को ऐसा बनाने के लिए। अंत में उनमें से सब एक ने अपना जीवन दे दिया और बुढ़ापा दे दिया। खुद अब विचार करके कहते हैं ना काम काम भाई, ये अच्छा अच्छा पहनते हैं पहन करके अच्छा कपड़ा मिल गया पहन के कामना बंद हो जाएगी, खराब खाने को मिलता है अच्छा नहीं, अच्छा खाने को मिल गया तो उसकी वो प्रवृत्ति दूर हो जाएगी नहीं प्रवृत्ति लगी रहेगी। लकड़ी पर जलती हुई आदमी जितना भी चीज हो वो जलता जाएगा कभी नहीं जलता। उसी तरह से हम लोग भोगों की जितनी भी चेष्टा करेंगे और भोग मिलते भी जाएंगे और वो भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए भोगों की तरफ भी अधिक चिंता ना करके भगवत भाव सिद्धांत भक्ति कैसे आए इस पर विचार कैसे आए और जहां तक हो सके इन चीजों को भूलने की चेष्टा करें, तब तो यथार्थ में भक्ति में बढ़ेंगे। मैंने तो ये 50 बार सुना कुछ मन नहीं किया, ऐसा मत करो जीवन बर्बाद मत करो, नहीं तो कुछ दिनों के बाद में किस संसार की प्रवृत्ति जो भीतर में अभी सोई हुई है फिर जग जाए, गई तो है नहीं अभी सो रही है, फिर वो प्रवृत्ति आ जाएगी। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, सबके लिए नहीं किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में, लड़कों ने लड़कियों ने स्त्री ने माता पिता ने झाड़ू मार करके बाहर कर तो जबरदस्ती हम आ गए। यदि उनको ये मालूम हो जाए जैसे घर में जाने से बड़े आराम के साथ में हम अभी लौट जाए, तो इसलिए वो कोई भी प्रवृत्ति है सोया गया इंजेक्शन देकर के, जब इंजेक्शन का प्रभाव इंजेक्शन मैंने क्या वो जो मार करके अपमानित करके जो घर से निकाला है वो इंजेक्शन का जो प्रभाव जब चला जाएगा ना तो वो और कुछ लोग खुद जन्म के संसार से जो आए हैं साधु संघ, यदि साधु संघ नहीं किया और यदि उनके विचारों को नहीं दिया जैसे कल लोग बतला रहे थे ऊर्जा कहाँ से आएगी,
जो चीजों के
साधु संघ से आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके साधु संघ कर ही नहीं सकते ना समझ सकते हैं इतनी अभी नहीं, जैसा जो कि व्यक्ति है वैसा यदि जो को साधु संघ मिलेगा तो समझेगा। हम लोगों को कुछ नहीं था साधुओं का संघ मिल जाने से भी हम लोगों को कुछ लाभ नहीं है, हमारे उससे थोड़ा सा ऊपर वाला होना चाहिए, मैं तो उनके संघ का प्रभाव ही नहीं समझेंगे। इसलिए उनके संघ के प्रभाव से वो अपने भावों को संक्रमित करके जिससे जो ज्योति विकसित होती है और तब उसको हम ग्रहण करते हैं अपने हृदय में लाएंगे, तब ये भक्ति का भाव है। और नहीं तो हम यदि हम उपेक्षा हमने की जीवन को ऐसे हंसते खेलते हुए सुरंजन और अपराध जैसा जीवन को बर्बाद कर दिया बकरी जाए तो नष्ट हो जाए। पूर्ण सावधानी के साथ अवस्थन करो और पूर्ण साधु सं अपने से लाख जन्म तक परिणाम करोगे ये निश्चित रूप में जान करो। लाख जन्म में भजन अकेले किया माया नहीं छोड़ेगी, थोड़ा सा मौका देते कि बस झपट करके पकड़ ली। और जिसका अर्थय किए हो जिसके अर्थय में हो वो यदि भगवत भजन करायण हुआ और समर्थ हुआ तो सब समय तुम्हारी रखता। इसलिए अष्टय गैया भजे कृष्ण कार्य नहीं करे आप सब मर्याता ऐसा समझो। अष्टय कभी मत छोड़ो और भगवान का तो निश्चित कैसे करो इसके बाद प्रसाद महाराज कैसे करो भगवान लाभ विपत्तियां आई सबसे मत फंसो। और जिसके द्वारा विपत्ति आ रही है उसके ऊपर में भी देश बुद्धि मत करो। आया समझ में? जिसके द्वारा विपत्ति आ रही है मत समझो ये हमारा शत्रु है। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता ने कोई भी दोष नहीं देखा और न उसे उसके प्रति कार्य दिए गए भजन करने में ऐसा ही जो किसी ये हो रहा है हमारे प्रति कोई जब भजन में बाधा भी डालता है क्यों डाल रहा है अपने कर्म सत्य कंपान से निष्पान भूम ज्ञान सुसंधि आत्मसुसंधन जो भूखा रहा है अपने द्वारा आत्मसुख पहले का जो किया अथवा जिसको कोई कर्म नहीं है जैसे भीष्म पितामह पांडव लोग द्रौपदी पर जो कष्ट आया चित्रकेतु महाराज पर जो कष्ट आया वो आत्मसुख विपाक है। अपना किया हुआ ये पाप था जिससे कि उनको ऐसा हुआ। द्रौपदी कौन सा पाप किया उसने कोई कहते हैं कि पूर्व जन्म में
दसवीं विद्या
एकादशी विद्या सीता जी ने भी सीता जी के लिए समर्थ पुराणों में ऐसा कहा जा सकता है शिक्षा के लिए व्यास जी कर सकते किंतु उद्देश्य ये नहीं इसलिए उनकी बात छोड़ दो। उन लोगों का स्वकृत विपाक नहीं है उनका क्या है भगवत इच्छा के कारण
जिन विदत
जगत में शिक्षा देने के लिए ये हम लोग ऐसा ना करें। इसलिए चित्रकेतु महाराज प्रहलाद महाराज जी पांडव लोग इनका कष्ट भगवान जगत में शिक्षा देने के लिए अपने परिकरों के लिए द्वारा ऐसा है। इसलिए सबसे अनुकंपाम भगवान की इसमें कृपा समझो जो कुछ भी करता है और उसको हंसते हुए झेलो। झेलना तो पड़ेगा झेलना पड़ेगा चाहे अपना किया हुआ कर्म हो चाहे भगवान की वो कृपा से इसलिए हंसते हुए भगवान की कृपा समझ करके या अपना कर्म किया हुआ उसका ऐसा बहुत समझ करके निश्चिंत मन से बहुत सोचो एक मिनट भी समय बर्बाद इस करके भजन करो। तो इसके बाद में चित्रकेतु महाराज का उपाख्यान इत्यादि नौ स्तंभ का विचार है दशम स्तंभ से एक श्लोक को जो भ्रमर गीत का वो सभी लोग कुछ कुछ जाने दूसरा श्लोक सकृत अधर्म पाए विश्वास সুমনা সেই অসত্য সত্যি স্মানি সাধারণ অর্থাৎ মোহিনী মাতা বিশেষ করে মধুর সুগন্ধিত উচি পর আপ জায়গা হওয়া উৎপর্ষ করতে আনে কে বাদ পায়ে কাম করায় কি এসে করতে বিচার কৃষ্ণ তো অবস্থা কাম দিয়া না কাম করায়
পান
করায় ভরা বাড়তা উৎসাহ কম লেতা ভরা লোকা দিতে কৃষ্ণ কাজ পান করা গোপীয় কর রে তো ফুল পান করা কিন্তু পান তো করতে ভ্রমণ হ্যাঁ হুয়া ইসা কারণ দে জে আপনি তুলনা সমস্যা দে রে পরিচরতি কথম তৎপাদ পদ্মা তৎপাদ পদ্মম নিপদ্মে যে হম গোপিয়া কে তিনি হ্যাঁ লাখ এক গোপিয়া সে এক ফুল সে দূসরে ফুল পর যাতা এক গোপি সে দূসরে इसके लिए कहते हैं नूपाद पद्मा यदि कृष्ण पूछे या भ्रमर पूछता है अभी यदि ऐसी ही बात है तो जो अत्यंत पति प्रसार स्त्रियां हैं ऐसे व्यक्ति से घृणा करें तो लक्ष्मी जी ने उससे घृणा क्यों नहीं की उनकी क्यों परिचर्या उनकी सेवा क्यों करती है উত্তম স্বচ্ছেতা গোটি আবিষ্কার উত্তর দেবেন ও কে হাজি বিমুগ্ধ হয়ে যায় বিচার করার ক্ষমতা নেই बुद्धि नहीं, मूर्ख नहीं कहा किंतु मूर्ख ही कहा, विचार करने की शक्ति उनमें नहीं है, इसलिए क्यों उत्तम श्लोक जल गई। कृष्ण जो है उत्तम श्लोक है, उनकी जल्पना से अतः वो मीठी मीठी चिकनी चिंपड़ी बातें करते हैं, अपनी बातों से उसको मोह, किंतु हमको नहीं मोह सकते, हम उनके शेर में नहीं पढ़ने वाले। कारण है ये भ्रमर भ्रमर जाते अयम स्वाभाविक स्थिति में कभी ये क्यों हमारे ऊपर में दोष लगा रहे हैं, हमारे प्रभु के ऊपर, हमारे कृष्ण के ऊपर क्यों दोष लगा रहे हैं। जो तो पदसी निजंबम जत्पति जदू की समान्य जब ऐसे तुम समर हो उनके दूर ना समझ रहे और मदिरा पान करके मस्त होकर के जो नहीं करना चाहिए वैसा करता है, तो तुम्हारे प्रभु जो मदिरा अधिक पान करते हैं उनकी दुकान पूरी है, उनकी दशा क्या होगी। जदुओं की सभा में जदु लोग उनकी विडंबना करें, विडंबना में अपमानित करें, तो उसी के लिए हम सब भ्रमर जा चुके हैं। यदि ऐसा भ्रमर कर रहा है जो हम भ्रमर जा चुके हैं, हम अयम स्वाभाविक एवं समस्तु स्थिति हमारे गुरुओं में स्वाभाविक रूप से ये स्थिति ना है। गुरुओं के वजह से ये नहीं पिता, ये कोई अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक हमें स्वाभाविक रूप से है, नए रूप में हमने इसको नहीं लगाया। जो फूलों का पराग जैसे आ जाता है वैसे ये कौन कौन ये नहीं आया। सच एक मान मान सत्य मधुपुर ज्ञान काम अपनी स्त्री स्वप्न की अपक्षमता। हमने तो कभी भी मधुपुर जी की किसी भी स्त्री को कभी भी स्वप्न में भी हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्या हमारा अपराध है, वो अपराध हो जब समित्री हम मानव आरोप करोगी, तुम ऐसा मान कर रही हो। हमारे प्रभु भी मथुरापुरी में किसी भी स्त्री से उनका कोई भी परिणय नहीं, न कोई स्त्री उनका मुख ही नहीं देखते हैं। आपका ऐसे कैसे मान हो गया, किस कारण से हुआ, सब कुछ किसी के लिए सब कुछ बचे। असत्य कभी प्रकृति उक्ति अनुराग एक बार जो कभी पान कराया बस एक बार मैंने किसी से करें अनुराग में अत्यंत अधिक अनुराग, जैसे गोपियों से कृष्ण का कभी दर्शन करती नहीं, किंतु कभी भी दर्शन नहीं किया दूसरे क्षण ही उनको ऐसा, ये भजन में भी ऐसा है। उसी तरह से हम लोग जितना भी भजन करें भावना क्या रहे, भजन सचमुच में ऐसे स्वाभाविक रूप में हुआ ये भजन। जैसे एक आदमी मान लीजिए किसी प्रकार से एक लाख नाम जप करके प्रकृति के साथ में वो देखता कि एक लाख नाम हमारा क्या हुआ, रोमांच नहीं हुआ, अक्सर बात नहीं हुआ, प्रेम से कोई चीज की अनुभूति नहीं हुई, पता कि हमारा एक भी नाम नहीं हुआ, वो ऐसा कोई भी शासन भजन करता है तो और उसको भजन की भूख लगती है, आशा नहीं है। यहां तक कि हम लोगों की तो बात क्या, सिद्ध लोगों को भी भक्ति विनोद ठाकुर उनसे ऊपर जो रागात्मिक भक्त हैं वो लोग प्रेम का जहां संबंध है वहां पर वो कहता है कि हमको कनिक भी प्रेम नहीं, भजन का भी ठीक वैसा ही। जो भजन नहीं करते हैं वो तो सोचते हैं कि आज हमारा खुद भजन करते हैं, निश्चिंत होकर के सकते हैं। आज भजन करने वाले में कभी भी उनकी तृप्ति नहीं होती और आकांक्षा नहीं होती, हमने कुछ भजन ही नहीं किया, ये उसको अनुभूति होती है। भजन किसको कहते हैं, अनुराग स्वभाव में कृष्ण के प्रति हो, ऐसा तो होता नहीं, इससे शिक्षा की कुछ भी करें। आज जो भजन नहीं करते हैं वो कहते हैं हम उसको भजन करते, उसी बात है। उसी तरह से कितने वर्षों से देख रहे हैं कृष्ण के साथ में बैठ रहे हैं, विलास भी कर रहे हैं, किंतु प्रतिदिन ऐसा है समझते हैं कि आज तक हमने कभी नहीं देखा, बस एक बहुत क्षीण रूप में थोड़े रूप में हमने उनको देखा, तो उसी के लिए कर एक बार सबसे बता ये अनुराग के कारण कृष्णाधिक्य जय उनकी तृष्णा। इसी प्रकार से भजन में भी हम लोग हैं कि तृष्णा हो, भजन किसे गाते हैं ये खूब अच्छी तरह से समझ असल उसमें प्रवेश। ये बतलाने का तात्पर्य क्या है, ये सब कहने का, गोपी में इतनी तृष्णा है तो हम लोगों में कुछ भी तो आभास ही तो होना चाहिए, अधर के लोग सुधार अधर की सुधार अधर सुधार अधर की सुधार अथवा
अधर ही
सुधार तो अधर ही सुधार। कृष्ण का श्री अंग जो कुछ भी है या गोपियों का वो सब अधर से ही रहते हैं। इति अथवा एवं एतावी अभी संकल्पना नम्रिया इसी भाव हम लोग क्यों नहीं मर रहे, अब तक तो कृष्ण के विरह में मर जाएगी, किंतु कृष्ण का अभर ही सुधा है और उन्होंने जोर करके पान करा दिया इसीलिए हम लोग मर नहीं रहे, नहीं तो न जाने कभी हम मर जाते। यहां पर उल्टा ये उदाहरण फूलों का रस तो वो लेता है भ्रमण, और यहां पर उल्टा है जो भ्रमण भी पिला रहा है अपना रस किसको फूलों को अपना प्रसन्न बनाने तो तुमने जोर करके क्यों पिलाए अपना रस, ये मेरे विरह में मर रही है, जब ये मर ही गई
कष्ट किसको दूं,
तो फिर मैं किसका कष्ट दे करके किसको और मैं सुखी होऊंगा। ये गोपियां अपने आप प्रश्न भी कर रही है और उत्तर भी दे रही है, कृष्ण को किसी को मारना बड़ा अच्छा लगता है। प्रहलाद महाराज जी को पांचों पांडव कितना कष्ट क्यों दिया, जरूरत क्या है, गोपियों की तो बात करें गोपियों को भी जो गोपियों से बढ़कर तो कोई भक्त नहीं है उनको इतना कष्ट इतना विरह क्यों दिया, किसी को बुलाने पर भी तो आ जाते हैं ना, हम बसाने बैठे क्यों नहीं मत भक्त जब हो जाए दिन रात ये चिंता कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि कर्मी योगी तपस्वी ये बुला लेंगे तो जल्दी से आ जाते हैं, सही आ जाते हैं और उनको वह मांगी वस्तु में देकर के चले जाते हैं, किंतु जब भी प्रेमी भक्त होगा ना उसको और तरसाएंगे, उनको शादी नहीं देंगे, वो देखा ना हम लोगों ने बालू की फल वाली फल दिख रहे हैं, कितना उसको समझाया। इस तरह से गोपियों को देखो, दिन रात उनके विरह में मर रहे हैं और सभी उनको चले गए इस बार बाह्य परिस्थित रूप से उनको दर्शन दिया सरकार। कृष्ण भजन में यही है, साधक अवस्था में भी रुकना और अवस्था में भी रुकना। बड़ी कष्ट की बात है कि मैं फिर किसको कष्ट दूंगा यदि गोपियां आके मर जाए, फिर ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं जिसको इतना कष्ट दूंगा। तस्मा आसन मरण अभाव, ये मरने बाकी है क्योंकि उन्होंने अगर के सुधार उन्होंने अमृत उनको पिला दिया। वहां पर भी ऐसे ही है, तब प्रथान को कम सप्तर्जी बन अगस्त कादर्शी से और सप्तर्जी पाया, इसीलिए उन्होंने अगस्त का को अगर को ही उसको खिलाया। सब पूरा एवं विचार याम विचार विचार याम आते इस प्रकार से विचार करके ही उसको खिला दिया। अतः सत्य के एवं पाए इस बार शब्द राजार बच्चों इसलिए
मरे
मर नहीं है, इसे एक बार अतो अस्म। अब गोपियां तुमको कार्य भ्रमण को अच्छा तुम भी विचार करो, हम लोग से सुख दान करने के लिए उन्होंने पिलाया ना अपने